તારીખ 23/10/1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 335 અને 338 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 749
પત્રાંક 335 ચલતા હૈ થોડા બહુ ચલ ગયા હૈ इन दिनों में बहुत उदासीनता के परिणाम चल रहे हैं वो पत्र में लिखा है। आगे लिखते हैं, एक अर्ध जिज्ञासु वृत्ति वाले पुरुष को एक पत्र लिख करके भेजने के लिए एक हफ्ते के पहले लिखा था, पीछे से अमुक कारण से चित अटक जाने से यह पत्र वैसे ही पड़ा रहने दिया था। जो आपको पढ़ने के लिए इस लिफाफे में रख दिया है, भेज दिया है। उसमें से उतनी बात निकलती है कि उदासीनता उतनी थी कि लिखते लिखते उपयोग नहीं चलता है तो लिखना छोड़ देते थे, पत्र अधूरा छोड़ देते थे, उतनी उदासीनता हो हुआ करते थे। अब लिखते हैं कि जो वास्तविक रूप से ज्ञानी को पहचानते हैं, जो वह ध्यानादि को चाहते नहीं, ऐसा हमारा अंतरंग अभिप्राय वर्तता है। ध्यान के विषय में एक और बात कही है, कई मुमुक्षु लोग ज्ञानी की पहचान के विषय में तो इसका क्या बड़ा लाभ है वो तो समझते नहीं, शास्त्र पढ़ते हैं और ध्यान करने लग जाते हैं, क्योंकि शास्त्र ज्ञान से पता चला कि ध्यान करने से स्वरूप में एकाग्रता हो जाती है, हो सकती है ऐसा, तो उसके पूर्वक्रम के कोई प्रोसेस हुए बिना सीधा कोई ध्यान लगा करके अंतर एकाग्रता को चाहते हैं तो अक्रम से यानी गलत पद्धति से अपना काम करना चाहता है, जो कभी होने वाला है ही नहीं। पहले ज्ञानी को तो पहचानो, फिर अपने स्वरूप को पहचानो, फिर ध्यान की बारी है। तो जो ज्ञानी को पहचानते हैं या पहचानने के विषय में लगे हुए हैं वो ध्यान में नहीं चढ़ जाते हैं, ध्यान तो हो ही नहीं सकता, किसी ने किसी प्रकार के विकल्प में चढ़ जाते हैं, चाहे वो विकल्प आत्मस्वरूप के संबंधित हो तो उस विकल्प में चढ़ जाते हैं कि जैसे मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसे वो विकल्प में चढ़ जाते हैं। जो ज्ञानी को पहचानते हैं उसको पहले तो ज्ञानी का ध्यान होता है, स्वरूप का ध्यान होने का अवसर उनको नहीं है, तो स्वरूप ध्यान में नहीं चढ़ जाता। उसका उसका ध्यान तो वहाँ ही रहता है, जैसे सुभाग भाई का हुआ, वो स्वरूप ध्यान में आने का सवाल नहीं रहता, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता कि जिस स्वरूप को मैं पहचानता नहीं उसका ध्यान में कहाँ से करूँगा, इसलिए वो ध्यान का विकल्प नहीं करेगा। ऐसा हमारा अंतरंग अभिप्राय वर्तता है, ये हमारा अंतर अभिप्राय का विषय है। कुछ बातें ऐसी होती है जो अंतर की होती है, ऐसे अभिप्राय के विषय में भी है, तो ये हमारा अंतरंग अभिप्राय है ऐसा कहते हैं। ये अंतर की चीज है, ध्यान करना, ज्ञान को पहचानना, ये अंतर अभिप्राय का विषय है, अंतर अंतरंग बातें हैं, तो उस वे में अंतरंग अभिप्राय ऐसा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुभाग धर्म के क्षेत्र में आजकल सामूहिक ध्यान कराने की पद्धति हो गई है, वो बात सबों के लिए है ही नहीं, सर्व सामान्य मुमुक्षों के लिए है ही नहीं। हाँ, ध्यान बराबर ये ध्यान करवु पड़त नहीं, ये तो खाता पीता हालता चालता उठता बैसता सुता ये ध्यान रिये छे, એટલે એ ઓલું ધ્યાનમાં બેસવાનો વિકલ્પ એને નથી આવતો, કેમ કે એનું ધ્યાન એક જગ્યાએ છે, એનું ધ્યાન ચાલુ છે, અને બીજું ધ્યાન કરવાની ઈચ્છા જ નથી, એ ઈચ્છે જ નહીં એમ કહેશે, એ ના પાડે છે કે વાસ્તવિક જ્ઞાનીને ઓળખે છે તે ધ્યાનાદિને ઈચ્છે નહીં એમ કહે છે। और वो बड़ा यथार्थ है और वो अंतरंग अभिप्राय है, खुद का स्वयं का है वो बताया। मात्र ज्ञानी को चाहते हैं, मात्र ज्ञानी को चाहते हैं मैंने ज्ञानी को भी चाहते हैं और अनुकूलता को भी चाहते हैं, ज्ञानी को भी चाहते हैं और कुटुंब परिवार को भी चाहते हैं। ज्ञानी को भी चाहते हैं और मान भी चाहते हैं। वो मात्र ज्ञानी को नहीं चाहते। दो घोड़े की सवारी इसमें नहीं चलती। जो मात्र ज्ञानी को चाहते हैं उनको दूसरे के प्रति, चाहे कुटुंब परिवार हो चाहे कुछ अनुकूलता हो, उसके प्रति प्रेम नहीं होता। कि हमको तो ज्ञानी से भी प्रेम है और हमसे हमको हमारे परिवार के वाले के प्रति भी प्रेम है, नहीं हो सकता। मुमुक्षु की तो बात चल रही है, मुमुक्षु तो एक वात्सल्य होना अलग बात है, एक मार्ग के चलने वाले हैं तो वो तो दूसरे भी होते हैं, उसमें परिवार बिना परिवार वाली का भेद क्यों छाटना है, वो भेद क्यों है इसमें, तो सब शरीक है मुमुक्षु तो। मुमुक्षु के दृष्टिकोण से देखे तो सभी मुमुक्षु शरीक ही होते हैं, इसमें परिवार वाले हैं इसलिए कुछ अधिक प्रेम, तो वो बात तो गड़बड़ वाली हो ही गई। वो कोई कुटुंब में झगड़ा कराने की बात नहीं है, होता है क्या उसकी बात है, सहज ऐसा ही होता है, एक के प्रति अधिक झुकाव होने से और जगह से जीव सहज हट जाता है, एक और अधिक झुकाव होने से, तीव्र झुकाव होने से दूसरे हर जगह से हट जाता है, क्यों कि एक और अधिक झुक गया तो फिर दूसरी जगह झुकने का कैसे हुआ, कैसे हुआ, हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो मात्र ज्ञानी को चाहते हैं, पहचानते हैं और बसते हैं वही वैसा होता है, और वह उत्तम मुमुक्षु जानना योग्य है। अगर कोई ऐसा मुमुक्षु है कि जो मात्र ज्ञानी को ही इच्छता है और उनको पहचानता भी है और उसकी परिणति उसको ही बजती है, अगर कोई ऐसा है तो वह उत्तम मुमुक्षु है, ऐसा जानना चाहिए। फिर इनके दूसरे दूसरे कोई दोष दिखे तो उसकी मुख्यता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मुमुक्षु की भूमिका में कोई सर्वगुण संपन्न होता है, वैसे बात हो ही नहीं सकती। और प्रकृति के परिणाम तो ज्ञानी में भी दिखने में आएगा, लेकिन ज्ञानी हुआ ये सबसे बड़ा गुण है। ऐसे इस तरह से जिसके परिणाम जिसकी परिणति ज्ञानी को भसती है तो बहुत बड़ा गुण है। इसलिए दूसरी सब बातें गौण होनी चाहिए और ये उत्तम मुमुक्षु होना कहना चाहिए, जानना चाहिए, सिर्फ कहना चाहिए नहीं जानना चाहिए। क्यों कि दर्शन मोह का अनुभाग तोड़ने में, दर्शन मोह की ताकत तोड़ने में बहुत बड़ा काम हो गया उसका, तो एक बहुत अच्छा साधन हो गया इसके इसके परिणाम में, तो वो काम दर्शन मोह को मारने के लिए इतना बड़ा काम किया तो उसको उसको उस तरह से कंसीडर करना चाहिए, उसकी गिनती उसी तरह से होनी चाहिए कि दर्शन मोह को मारता है, उसने दर्शन मोह को मारा है, वो बात मुख्य होनी चाहिए। एक साथ होता है, और जो एक मात्र ज्ञानी को चाहता है वही पहचान सकता है, और जो पहचानता है उसको ही उसकी परिणति भजती है, कारण कार्य भी है और कारण कार्य होने से एक साथ होते हैं।
एकमात्र ज्ञानी नहीं चाहिए ना,
समझ के आधार से, समझ के आधार से कि हमको ऐसा होना है, हमको हमारा परिभ्रमण को खत्म करना है, हमको दर्शन मोह को खत्म करना है, पूरा संसार तिर जाएंगे, तो मूल्यांकन होने की बात होगी, बात हो गई मूल्यांकन की। समझ में मूल्यांकन आया, समझ यथार्थ हुई, यथार्थ समझ हुई तो उसका परिणाम आया, तो दूसरे को चाहता नहीं है, जब एक को चाहता है तो उसको पहचान ले सकता है, पहचान सकता है तो पहचानने से उसकी परिणति हो जाती है। यह उत्तम मुमुक्षु जानना योग्य है, कैसी उत्तम मुमुक्षु की परिभाषा आई इधर, उत्तम मुमुक्षु की डेफिनेशन क्या, क्या परिभाषा है, ये परिभाषा है, बहुत शास्त्र पढ़ता है, 8-8 घंटा पढ़ता है इसलिए उत्तम मुमुक्षु है, सो बात नहीं है, ध्यान में 3 घंटा बैठ सकता है इसलिए वो उत्तम मुमुक्षु, सो बात नहीं है, बहुत मंदिर जी में जाकर के पूजा भक्ति करता है इसलिए उत्तम मुमुक्षु है, सो बात भी नहीं है, और व्रतादि धारण कर सकता है इसलिए उत्तम मुमुक्षु है, वो बात नहीं लिया, दान ज्यादा देता है इसलिए उत्तम मुमुक्षु, वो बात भी नहीं लिया, ऐसे बात होगी। फिर तीसरे दफे लिख दिया, उदास परिणाम आत्मा को भसते रहते हैं, सहज रूप से हमारे परिणाम उदास हो गए हैं, कहीं भी हमारा चित्त लगता नहीं है, क्योंकि कहीं रस नहीं आता, रस आए ऐसी कोई चीज दिखती नहीं ज्ञान में, इसलिए सहज उदासीनता है, चित्त की स्थिति में यदि विशेष रूप से लिखा जाएगा तो लिखेंगे, क्या कहते हैं कि हमारी चित्त स्थिति में लिखने का प्रकार होएगा तो लिखा जाएगा, वरना हम विशेष रूप से नहीं लिखेंगे, हमारे चित्त पर हम कोई बलात्कार करके नहीं लिखेंगे, सहज लिखने का विकल्प चला लिख देंगे, वरना नहीं लिखेंगे, इतनी उदासीनता छा गई है, कहने का वो अभिप्राय। हाँ, आकुलता बोलवा में आकुलता से, लिखवा में आकुलता, विकल्प मात्र में आकुलता से, तो अवलोकन चाले तो समझायू छे, आकुलता देखा भी ए अनुभवनी यथार्थता छे, केम के आकुलता छे, छता देखाती नहीं, तो अनुभव की यथार्थता क्या रही, केम के तो अनुभव नो विषय छे, परिणाम में आकुलता है, निर्विवाद बात है, फिर भी दिखती नहीं तो अनुभव यथार्थ हुआ के नहीं हुआ, क्या यथार्थ अनुभव हो ही गया, सही अनुभव यथार्थता को उत्पन्न करता है, सही अनुभव यथार्थता को उत्पन्न करता है, वैसे यथार्थता है वही सम्यक्त्व का प्री स्टेज है, और वो प्री स्टेज को मुख्य रूप से कोई उत्पन्न करने वाला है आपको सही अनुभव है। इसलिए यथार्थता के साथ सही अनुभव ज्ञान जुड़ा हुआ है। ऐसे यथार्थ तत्व को उत्पन्न करने वाले बहुत से फैक्टर हैं, उसमें ये प्रधान फैक्टर है। बाकी जो जो कारण से जीव के दर्शन मोह के परिणाम मंद होते हैं, जो जो कारण से जीव के दर्शन मोह का अनुभव घटने का यथार्थ रूप से होता है, वो ज्ञान को निर्मलता ले आता है और ज्ञान में निर्मलता आने से यथार्थता आती है। यथार्थता कब आती है ज्ञान में? कि निर्मलता आने से आती है। और निर्मलता कब आती है? कि इसका सैद्धांतिक संबंध जो है वो दर्शन मोह का अनुभव कम होने से होता है। इसलिए जो आत्मकल्याण की अंतर की भावना में आता है वो परिभ्रमण की चिंतना और वेदना में आता है, तो अनुभव वहाँ बिखरता है। तो वेदना वाले को यथार्थता आता है, आती है उसके पैमाने में। उस तरह से जो मात्र ज्ञानी को चाहते हैं, पहचानते हैं और बसते हैं, वहाँ भी दर्शन मोह का अनुभव टूटता है तो ज्ञान की निर्मलता आती है, तो यथार्थता आ जाती है। और अपने परिणमन के प्रयोग में जो अपने विकल्प मात्र में आकुलता दिखती है तो वहाँ भी यथार्थता आती है, क्योंकि दर्शन मोह का अनुभव घटता है। ये तीन फैक्टर अलग अलग भूमिका के प्रधान हैं, मुख्य हैं। और भी कुछ बातें हैं, वो तो गौण रूप से होती है, जो दर्शन मोह को तोड़ने में सहायक होती है, वो मुमुक्षुता के आनुषंगिक परिणाम है। इसलिए अवलोकन का प्रयोग का महत्व बहुत है, क्योंकि वो अनुभव को देखता है। अवलोकन है वो अनुभव को देखता है, इसलिए वहाँ दर्शन मोह का अनुभव अधिक पैमाने में टूटता है। ये 335 समाप्त हुआ। फिर इसके आगे जो सुभाग भाई का पत्र है वो 338 नंबर का है। अत्यंत परिणाम में उदासीनता, अत्यंत परिणाम में उदासीनता परिणमित हुआ करती है। देखो ये फागुन शुद्ध समय फागुन शुद्ध 13 दिन बाद दिखा हुआ है, तो वहां भी उदासीनता की बात दोहराई है। बहुत उदासीनता चल रही है, बहुत उदासीनता चल रही है। जैसे जैसे वैसा होता है, मैंने उदासीनता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्रवृत्ति प्रसंग भी बढ़ता रहता है। देखो क्या कॉन्ट्राडिक्शन है। एक ओर प्रवृत्ति में उदासीनता बढ़ रही है, दूसरी ओर प्रवृत्ति बढ़ रही है, क्योंकि ये पूर्वकर्म अनुसार थी, उदासीनता पुरुषार्थाधीन थी, प्रवृत्ति प्रारब्धाधीन थी। जरूरी नहीं कि उदासीनता बढ़े तो प्रवृत्ति नहीं भी बढ़े, वो कोई जरूरी नहीं। प्राय घटती है, प्राय नहीं बढ़ती है, लेकिन उनको बात और अलग थी, दूसरी बात थी, बढ़ता जाती थी। जो प्रवृत्ति का प्रसंग प्राप्त होगा वैसा नहीं विचार में आया था, धारणा में ऐसा नहीं आया था, वो भी प्राप्त हुआ करती है। और इस कारण से हम ऐसे मानते हैं कि उतावल में, जल्दीबाजी में, पूर्व में निबंधन किए हुए कर्म निवृत्त होने के लिए उदय में आ रहे हैं। ये एक कर्म के उदय में आने के विषय में कुदरती परिस्थिति है। हाँ, कुदरती परिस्थिति है। जैसे आपको किसी एक विषय में मोह तोड़ना है तो वही विषय सामने आएगा मोह कराने के लिए। क्यों? कि आप तोड़ने के लिए तैयार हुए ना, तो जो सत्ता में जो स्थिति है वो अपकर्षण हो जाती है, वो स्थिति कम हो जाती है और फटाक से उदय में आ जाते हैं। हाँ, मुमुक्षु को भी लागू पड़ता। बहु भाग ऐसा देखा है हमने, किसी एक परिवार में कोई जीव को संसार का मोह कम होने की तैयारी होती है, उनके परिवार वाले उनको खींचते हैं। ऐसा थोड़ा चलता है, ऐसा थोड़ी ना चलता है। आपकी जिम्मेवारी है, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, खींचेंगे उनको संसार में, खींचेंगे। हाँ, बहु भाग ऐसा दिखने में आता है। जिसकी तैयारी होती है और जिसका लगाव छूटने लगता है तो दूसरे लगाव वाले उनको पकड़ते हैं, हमारा लगाव है इसका क्या, उसका लगाव भी गया नहीं, कम हुआ है, वहां से वो चालू हो जाता है। जैसे पत्नी बोलेगी फिर शादी क्यों किया, अगर आपको मेरे से उतना लगाव नहीं तो फिर शादी क्यों किया, बारात लेके क्यों आए थे। भूलोगी तो उसका दंड भोगो, ऐसा भूलेंगे। और पति को उदासीनता आई तो पत्नी बोलेगी कैसा कैसे चल सकता है। ये नहीं चलेगा, अधिकार बुद्धि तो हो ही जाती है आपस में, शादी करने के बाद अपन एक दूसरे में अधिकार बुद्धि होती है। हम चाहे वैसा करना ही होगा, क्यों नहीं करेंगे। ये क्यों होता है कि ये इस प्रकार के जो कर्म है वो उदय में बहुत जल्दी से आ जाता है, उतावल से आ जाता है। लिखा ना, उतावली में आता है, जल्दबाजी से आता है। तो क्या कहते हैं कि वो प्रवृत्ति छोड़ना चाहते थे, 25 साल की उम्र में वो व्यवसाय व्यापार की प्रवृत्ति कम करना चाहते थे, उदासीनता के कारण प्रवृत्ति बढ़ाने का कोई उत्साह ही नहीं था, फिर भी सामने से चला करके उदय आ जाते थे। तो ज्ञानी थे तो मालूम हो गया कि अरे ऐसा लगता है कि पूर्व में जो निबंधन किए हुए कर्म थे वो निवृत्त होने के लिए जल्दी से उदय में आ रहे हैं। गुजराती में कहवत है, गो मरवानी हो तो वाघरी वाड़े जाए। કેમ કે વાઘરી લોકો નિર્દય હોય છે, મારી જ નાખે હોય તો પ્રાણી આવે છે. એમાં કર્મ મરવાના તથામે આવવા માંડ્યા, એને ખબર નથી એની તાકાત કેટલી છે. હવે જો કર્મ મરને કે લીએ તૈયાર હોગી, એવું ઉદયમાં આ કે નાસોને વાલે થઈ ઇસલીએ તો ઉદયમાં આયે, અચ્છી બાત હૈ. આને દો, ક્યોંકિ ઇસકા મોત આયા હૈ, નહીં આયેંગે તો મરેંગે કૈસે, બાંધે તો હમને હી બાંધે હૈ, ઉસકા નાશ કરના હૈ, તો ઉદયમાં આયેંગે તબ તો નાશ કરેંગે, નાશ હોયગા ઇસકા, આને દો. ઉતની ખુદ કી તૈયારી થી, ગભરાતે નહીં થે, અરે હમારી ઉદાસીનતા બઢ ગઈ ઓર એ પ્રવૃત્તિ ક્યો બઢ રહી હૈ, હમકો તો તકલીફ હો રહી હૈ, હમકો તો તકલીફ હો રહી હૈ, વો બાત આને દો. હમારે હમારે પરિણામ તો લગને વાલે હૈ હી નહીં, હું તો બિચારે નાશ હોને કે લીએ આ રહે હૈ, ઉસકી મોત આઈ હૈ તો આઈ હમારે સામને આયે. એસા લિયા હૈ, દેખો યે જ્ઞાની કા પુરુષાર્થ કૈસા હોતા હૈ, કિસી કો બોલતે હૈ પુરુષાર્થ, ઉસી કો બોલતે હૈ યથાર્થ સમ્યક વિરક્તિ, સમ્યક વૈરાગ્ય ઉસકો બોલતે હૈ. કરોડો પુરુષાર્થ, એ ચાર પંક્તિ કા પત્ર હૈ. ફિર દૂસરે દિન ઓર એક પત્ર લિખા હૈ, 339 નંબર કા. અચ્છા અચ્છા, હે 339 87 નંબર નાખ્યો છે, આપણે 88 નંબર નાખ્યો છે, બોલો 200 નંબર નહીં, સાહેબ એક નંબરનો ફરક પડશે. મિતિમાં ફેર છે, ફાગણ સુદ 14 લખ્યું છે, આપણે ફાગણ વદ છઠ ને બુધવાર 1948 લખ્યું છે, મિતિમાં ફેર છે, મિતિમાં ફેર પડે છે, વધછઠ એટલે અઠવાડિયાનો ફેર છે, અધૂરો છપાયેલ છે, અહીં પ્રાપ્ત થયેલ મૂળ હસ્તલિખિત પત્રની ફોટોકોપી ઉપરથી સંપૂર્ણ આપેલ છે. ઈડરમાં ઘણા પત્રો છે, ઈડરમાં ઘણા પત્રો છે, ઓરિજિનલ પત્રો મેં વાંચ્યા ઈડરમાં. આપણે આમાં જે 321માં પાને છપાણો છે, ફાગણ સુદ 14 ઉપર છાપ્યું છે, એટલે બેની મિટીમાં પઠવડિયાનો ફેર છે. શનિવાર ને બુધવાર આમ 4 દિવસનો ફેર પડે છે, ફાગણ સુદ 13 ને શુક્રવાર છે, 14 ને આવે શનિવાર આવે, શનિ રવિ સોમ મંગળ બુધ 5 દિવસે ફરક છે. ના એટલે શું છે કે આમાં જે ઈડરની મૂળ પ્રત ઉપરથી થાય છે એટલે ઈડરવાળો બરાબર છે, આમાં ફેર હોવાનો સંભવ છે, ઈડરવાળો બરાબર લાગે છે. આમાં લખ્યું, ના આમાં આમાં લખ્યું છે, એમને ઈડરની મૂળ હસ્તલિખિત કૃપાળુજીના હાથે લખેલી જે છે. हेडिंग छे, किसी का दोष नहीं, हमने कर्म बांधे हैं इसलिए हमारा दोष है। उदय में प्रवृत्ति बढ़ रही थी, इसमें किसका दोष है? ये हमारा दोष है, हमारी साधना से वो प्रतिकूल है, प्रवृत्ति बढ़े वो हमारी उदासीनता से अनुकूल नहीं है, वो प्रतिकूलता आई सामने, इसमें दोष हमारा है, किसी और का दोष नहीं है, क्योंकि कर्म तो हमने बांधे हैं। यही सिद्धांत के अनुसार किसी भी जीव को किसी भी प्रतिकूलता का उदय आता है, वो अपने बांधे हुए कर्म का आता है, और उसी तरह से उसको ध्यान में लेना, लक्ष्य में लेना, वही यथार्थ है। बहुभाग जीव ऐसा करता है कि प्रतिकूलता हमने किसने दी, कि फलाना फलाना हमको प्रतिकूलता दे रहे हैं, ये यथार्थ नहीं है। कभी ऐसा होता भी है कि सामने वाला जीव का प्रतिकूलता देने का अभिप्राय भी होता है और प्रवृत्ति भी होती है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो हमको प्रतिकूलता दे रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। क्यों? कि किसी के परिणाम से कैसी कोई प्रतिकूलता खड़ी कर सकते हैं, ये वस्तु का स्वरूप में है ही नहीं, किसी का दूसरे पदार्थ पर अधिकार है ही नहीं। फिर भी होता है तो हमारे कर्म के कारण से होता है, मेल होता है इनके परिणाम के साथ, इसका मतलब नहीं है कि वो कर सकता है, वो सकता नहीं है, वो बात फुल एंड फाइनल है, कर सकता ही नहीं। कोई जीव दूसरा पदार्थ का कुछ भी नहीं कर सकता, हमारे उद्देश्य का कारण से जो भी होता है वो होता है, और हमको कुछ फील होता है, दुख होता है कि ये हमारी प्रतिकूलता है, ये हमारी प्रतिकूलता है, ये हमारा उदय में हमारा जुड़ना है। हम जुड़ते हैं तो दुखी होते हैं, अगर हम नहीं जुड़ते हैं तो उदय की ताकत नहीं है कि हमको दुख पहुंचा सके, ये कोई उदय की ताकत है ही नहीं। मतलब जीव दुखी होता है तो अपने कारण से, उदय आया भी अपने कारण से और दुखी हुआ भी अपने कारण से, इसलिए न उदय किसी ने भेजा है, न भेज सकता है, न भेजाया जाता भी है, और न कोई दुखी कर सकते हैं, न कोई दुख पहुंचा सकते हैं, सब में अपना ही रोल है मुख्य रूप से। फिर भी हम दूसरे के प्रति हमारे अपराध का आरोप करते हैं, वो सरासर अन्याय है। वो तो दोष दृष्टि के कारण से हम विपरीत देखते हैं, वो अन्याय है, वो न्याय नहीं है। सोमवार को दो पंक्ति काटी है उसमें, सोमवार को पत्र प्राप्त हुआ था कि जिसमें तिरने के लिए जीव को प्रथम क्या जानना चाहिए, वैसे ये वगैरह प्रश्न थे। ये पंक्ति क्यों काटी तो समझ में नहीं आ रही है, उसमें तो कोई काटने जैसी बात व्यक्तिगत नहीं थी, वो तो एक जिज्ञासा लिखा है कि किसी भी जीव को संसार को तिरने के लिए सबसे पहले क्या जानना चाहिए, कि हम क्या करें क्या नहीं करें, वो सबसे पहले क्या जानना चाहिए, ऐसे ऐसे ये वगैरह प्रश्न थे ज्योतिष की आमनाइस के विषय में। कितनी विगत मैंने बाबत कितनी बाबत लिखी ये पढ़ी है, बहुभाग उसका जानने में है, फिर भी चित उसमें बिल्कुल प्रवेश नहीं कर सकता है और उस विषय में पढ़ना सुनना कदापि चमत्कारिक जैसा हो तो भी बोझारूप लगता है, थोड़ी भी उसमें रुचि नहीं रही है। ज्योतिष के विषय में अपने परिणाम बत दिखा रहे हैं कि आपने कुछ बात लिखी है, विस्तार से पढ़ी है, उस विषय में ज्योतिष विद्या के विषय में हमारी जानकारी भी बहुत है, बहुभाग जानकारी है, संपूर्ण नहीं लिखा है, बहुभाग जानकारी है, फिर भी चित ऐसे विषय में प्रवेश नहीं कर सकता। हमारी उदासीनता उतनी है कि संयोग की अनुकूलता और संयोग की प्रतिकूलता की चिंता में हम जा ही नहीं सकते, ये बात तो हमको बोझारूप लगती है, आकुलता लगती है, भविष्य की क्यों चिंता करें, जो भी उदय आएगा तैरने के लिए आएगा और हमारे किए हुए कर्म का उदय आएगा, हमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारा उपयोग उसमें प्रवेश नहीं कर पाता और उस विषय में ज़्यादा पढ़ना या सुनना कोई चमत्कारिक जैसा लगे तो भी हमको बोझा लगता है, हमको चमत्कार में आकर्षण नहीं होता, उस चमत्कार में हमको रस नहीं आता, उल्टा में हमको बोझा लगता है कि इन सब बातों में हमको आकुलता दिखती है, हमको उस दिशा में जाना ही नहीं है, ये सब विकल्प है, आकुलताजनक है, मलिन भी है, क्योंकि दूसरे पदार्थ की वांछा उसमें रही है, इसलिए मलिन भी है और बिल्कुल हमारे मार्ग से विपरीत है, हम नहीं जाना चाहते। थोड़ी भी उसमें रुचि नहीं रही है, बिल्कुल रुचि नहीं है उसमें, एकदम अरुचि का विषय हो गया है, जानते हैं ज्योतिष क्या चीज है, हमको नहीं सुहाता। कैसे अच्छा लगेगा, जो नुकसान कारक दिखता है वो अच्छा कैसे लग सकता है, बन ही नहीं सकता। जिसको अनुकूल संयोग में सुख है, प्रतिकूल संयोग में दुख है, ऐसा जिसका निश्चय है, उनको ये ज्योतिष के विषय में रस आएगा, लेकिन वो बात नहीं है, वो बात तो उधर है ही नहीं, इसलिए वो नुकसानकारक दिखता है, आकुलता वाला दिखता है, मलिन दिखता है, बिल्कुल रुचि नहीं है। तो फिर हमको क्या है इस विषय में, और भी आगे लिख रहे हैं कि हमको फिर रुचि नहीं है तो फिर हमको किस में रुचि है, कि हमको तो मात्र एक अपूर्व ऐसा सत का ज्ञान के विषय में ही रुचि है, हमारे स्वरूप ज्ञान के विषय में रुचि है, और कोई विषय में हमको रुचि बिल्कुल नहीं है, ऐसा करके। और ये पत्र तो काफी लंबा चौड़ा है, विकल्प के स्वाध्याय में आगे देंगे, यहाँ तक रखें।